पद्य 40 का गुप्त इतिहास संख्या 28 यहेजगेल संख्या 9।
प्रेरणा के अनुसार जब प्रेरणा का प्रश्न आता है तब प्रत्येक तथ्य का अपना महत्व होता है और प्रत्येक सिद्धांत का अपना महत्व होता है।
बाइबल में वे सभी सिद्धांत समाहित हैं जिन्हें मनुष्यों के लिए समझना आवश्यक है ताकि वे या तो इस जीवन के लिए अथवा आने वाले जीवन के लिए उपयुक्त ठहरें, और इन सिद्धांतों को सब समझ सकते हैं। जो कोई भी इसकी शिक्षा का मूल्य ग्रहण करने की भावना रखता है वो बाइबल के किसी एक अंश को भी बिना उससे कोई सहायक विचार प्राप्त किए नहीं पढ़ सकता, परंतु बाइबल की सबसे मूल्यवान शिक्षा आकस्मिक या असंबद्ध अध्ययन से प्राप्त नहीं होती। उसके सत्य की महान व्यवस्था इस प्रकार प्रस्तुत नहीं की गई है कि उतावला या असावधान पाठक उसे समझ सके। उसके बहुत से खजाने सतह के बहुत नीचे स्थित हैं और उन्हें केवल परिश्रमी खोज तथा निरंतर प्रयास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वे सत्य जो उस महान समग्रता का निर्माण करते हैं खोजे जाने और एकत्र किए जाने चाहिए, यहाँ थोड़ा और वहाँ थोड़ा। यशाया 28:10। जब इस प्रकार उनकी खोजबीन करके उन्हें एक साथ लाया जाएगा तब वे एक दूसरे के साथ पूर्णतः अनुकूल पाए जाएंगे। प्रत्येक सुसमाचार अन्य सुसमाचारों का परिपूरक है, प्रत्येक भविष्यवाणी दूसरे की व्याख्या है, प्रत्येक सत्य किसी अन्य सत्य का विकास है। यहूदी व्यवस्था के प्रतिरूप सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रत्येक सिद्धांत का अपना स्थान है, प्रत्येक तथ्य का अपना आशय है, और उसकी संपूर्ण रचना अपनी योजना और क्रियायामन दोनों में अपने रचयिता की गवाही देती है। ऐसी रचना की कल्पना या निर्माण अनंत के अतिरिक्त कोई अन्य मन न कर सकता था। एजुकेशन 123।
वास्तविक तथ्य ये है कि इब्रानी अभिव्यक्ति एरे बोकर बाइबल में 8 बार पाई जाती है। डैनियल 8:14 को छोड़कर जहां इसका अनुवाद डेज किया गया है, इसे सदैव इवनिंग एंड मॉर्निंग के रूप में अनुदित किया गया है। प्रेरित वचन के अनुसार पद 14 एडवेंट फेथ की फाउंडेशन एंड सेंट्रल पिलर है।
वो पवित्र शास्त्रीय वचन जो अन्य सभी से बढ़कर एडवेंट विश्वास की नींव और उसका केंद्रीय स्तंभ दोनों रहा था, ये उद्घोषणा थी 2300 दिन तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियल 8:14। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 409।
अतः तथ्य ये है कि उस पद में डेज उस इब्रानी अभिव्यक्ति के प्रयोग का 7 बारों में 8वां अवसर है, और बाइबलगत घटना ये है कि परमेश्वर ने किंग जेम्स संस्करण के अनुवादकों का जो भविष्यवाणीगत मार्गदर्शन किया उसने जानबूझकर 8 के 7 में से होने की बाइबलगत पहेली को उस पद के साथ संबद्ध किया जो 8वें अध्याय के 2 दर्शनों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। 8वें अध्याय में विजन के रूप में अनुदित एक शब्द इब्रानी शब्द खजौन है और दूसरा मारे है। मारेह का अर्थ अपीयरेंस है और मारेह दर्शन परमेश्वर के भविष्यवाणीगत वचन में मसीह के प्रकट होने का दर्शन है। दानियल 8:14 का मारेह दर्शन ये पहचान कराता है कि मसीह को 22 अक्टूबर 1844 को प्रकट होना था और अचानक अपने मंदिर में आना था। ये सब सत्य तथ्य हैं और इनका उस पद पर प्रभाव पड़ता है जो केंद्रीय स्तंभ है, और केंद्रीय स्तंभ कोई सिद्धांत या ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जो 22 अक्टूबर 1844 को पूरी हुई थी। तथ्य ये है कि वो पद स्वयं मसीह है, वही केंद्रीय स्तंभ है।
निराशा की इसी दशा में मैंने एक स्वप्न देखा जिसने मेरे मन पर गहरी छाप डाली। मैंने स्वप्न में एक मंदिर देखा जिसकी ओर बहुत से लोग उमड़ते चले आ रहे थे। जब समय का समापन हो जाएगा तब केवल वे ही बचाए जाएंगे जो उस मंदिर में शरण लेंगे, और जो सब उसके बाहर रहेंगे वे सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। बाहर की भीड़ जो अपने अपने विभिन्न मार्गों में लगी हुई थी उन लोगों का उपहास और परिहास कर रही थी जो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, और उनसे कहती थी कि सुरक्षा की यह योजना एक चतुर छल है और वास्तव में ऐसा कोई संकट है ही नहीं जिससे बचना आवश्यक हो। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया ताकि उन्हें दीवारों के भीतर शीघ्रता से जाने से रोक सकें। उपहास किए जाने के भय से मैंने यही उचित समझा कि तब तक प्रतीक्षा करूं जब तक भीड़ तितर बितर न हो जाए या जब तक मैं उनकी दृष्टि में आए बिना भीतर प्रवेश न कर सकूं। परंतु संख्या घटने के स्थान पर बढ़ती गई और बहुत देर हो जाने के भय से मैं शीघ्रता से अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मंदिर तक पहुंचने की अपनी व्याकुलता में मैंने अपने चारों ओर उमड़ती भीड़ पर न ध्यान दिया न उसकी परवाह की। भवन पे प्रवेश करते ही मैंने देखा कि वो विशाल मंदिर एक अत्यंत बड़े स्तंभ पर टिका हुआ था और उसी से एक मेमना बंधा हुआ था जो सर्वथा विदीर्ण और रक्तरंजित था। हम जो वहां उपस्थित थे मानो जानते थे कि ये मेमना हमारे ही कारण फाड़ा और कुचला गया था। जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करता उसे उसके सामने आकर अपने पापों को मान लेना पड़ता था। मेमने के ठीक सामने ऊंचे आसन थे जिन पर एक समूह बैठा था जो अत्यंत आनंदित प्रतीत होता था। स्वर्ग का प्रकाश उनके मुखमंडलों पर चमकता हुआ जान पड़ता था और वे परमेश्वर की स्तुति करते और आनंदमय धन्यवाद के गीत गाते थे जो स्वर्गदूतों के संगीत के समान प्रतीत होते थे। ये वे थे जो मेमने के सामने आए थे, अपने पापों को मान लिया था, क्षमा प्राप्त कर चुके थे और अब किसी आनंदपूर्ण घटना की प्रसन्न प्रतीक्षा में थे। भवन में प्रवेश कर लेने के बाद भी मुझ पर भय छा गया और लज्जा की ऐसी भावना हुई कि मुझे इन लोगों के सामने अपने आप को दीन करना होगा, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो आगे बढ़ने के लिए विवश किया जा रहा हूँ और मैं मेमने का सामना करने के लिए स्तंभ के चारों ओर धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती हुई बढ़ ही रही थी कि तुरही बजी, मंदिर कांप उठा, एकत्रित पवित्र जनों से जय के नारे उठे, एक भयावह ज्योति ने भवन को आलोकित कर दिया, फिर सब कुछ घोर अंधकार हो गया। वे आनंदित लोग उस ज्योति के साथ सब के सब अदृश्य हो गए और मैं रात्रि के निशब्द आतंक में अकेली रह गई। मैं मन की व्यथा में जाग उठी और अपने आप को यह विश्वास दिला पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन था कि मैं स्वप्न देख रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा भाग्य निश्चित हो चुका था, कि प्रभु का आत्मा मुझे छोड़ चुका था और फिर कभी लौटने वाला न था। एक्सपीरियंस एंड टीचिंग्स 24-25।
अब हमारी परीक्षा इस बात के विषय में हो रही है कि क्या हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और उसके बाद अपने पापों को स्वीकार करके उसके धर्मी ठहराने के आशीष को प्राप्त करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने की ये अंतिम पुकार हमारे व्यक्तिगत प्रवेश को रोकने के लिए बाधाओं से घिरी हुई है, परंतु यदि हम अब हिचकिचाएं तो हम रात के निस्तब्ध भयावह अंधकार में अकेले छोड़ दिए जाएंगे। परंतु यही मेरा एकमात्र अभिप्राय नहीं है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर उद्देश्यपूर्ण बल दिनों शब्द के भेद को सम्मिलित करके दिया गया जो अपने साथ उस भविष्यद्वक्तीय पहेली को लिए हुए है कि 8-7 में से है और यही 1,44,000 की मुहरबंदी के समय के चक्कों में से एक है। मुहरबंदी की अवधि में बाइबिल की भविष्यवाणी के छठे राज्य का प्रोटेस्टेंट सिंह और रिपब्लिकन सिंह दोनों ही उस पहेली को पूर्ण करेंगे कि 8वां 7 में से है। 1989 में अंत के समय से लेकर अब तक के 8 राष्ट्रपतियों में से ट्रंप छठे राज्य का छठा राजा बना और जब उसने अपना दूसरा कार्यकाल जीत लिया तब वह 8वां बन गया जो 7 में से है। 313 में मिलान के आदेश की पुनरावृत्ति करने में संयुक्त राज्य की कार्रवाई के अंतर्गत 1,44,000 की लौदीकिया की चाल फिलाडेल्फिया की चाल बन जाएगी। मुहरबंदी का समय रविवार के कानून पर समाप्त होता है जहां पोपाई सत्ता का घातक घाव चंगा हो जाता है और इस प्रकार वह प्रकाशित वाक्य सप्रह की उस पहेली को पूर्ण करती है कि वह 8वां है जो 7 में से है। एक तथ्य जो एक इब्रानी वाक्यांश में एक अंग्रेजी शब्द के रूप में निरूपित है उस पद को जो न्याय के आरंभ की पहचान कराता है उस पद में ले आता है जो 1,44,000 की मुहरबंदी के समय में न्याय के समापन की पहचान कराता है। प्रत्येक तथ्य का अपना स्थान है और नए नियम में केवल एक ही ऐसा प्रयोग है जहां किसी संख्या का दूसरी संख्या से गुणन कर एक संख्यात्मक रचना व्यक्त की गई है और पुराने नियम में केवल 2। इस संख्यात्मक रचना का अल्फा उत्पत्ति में है।
यदि कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो निश्चय ही लामेक का 77 गुना लिया जाएगा। उत्पत्ति 4:24।
ओमेगा की संख्यात्मक संरचना मत्ती में है।
तब पतरस ने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध पाप करे और मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 70×7 बार तक। मत्ती 18:21-22।
ये अनुच्छेद बाइबल में प्रथम और अंतिम अवसर को प्रकट करते हैं जहां किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाना निर्दिष्ट किया गया है। संख्याएं तो बहुत हैं, परंतु उत्पत्ति का अल्फा और मत्ती का ओमेगा एक ही संख्यात्मक संरचना रखते हैं और वे 7 तथा 70, इन दोनों एक ही संख्याओं का प्रयोग करते हैं।
अल्फा और ओमेगा के बीच मध्य का
और वो एकमात्र अन्य स्थान जहां ये संख्यात्मक संरचना पाई जाती है लैवीय व्यवस्था 25 में है। वहां वे दो संख्याएं 7 और 70 नहीं बल्कि 7 गुना 7 वर्ष हैं।
और तू अपने लिए वर्षों के 7 सप्त गिने अर्थात 7 बार 7 वर्ष, और उन 7 सप्तों के वर्षों की अवधि तेरे लिए 49 वर्ष होगी। लैवीय व्यवस्था 25:8।
मध्य संख्यात्मक संरचना एक बार फिर 7 संख्या का उपयोग करती है परंतु 70 संख्या का नहीं। जिस पदांश में यह स्थित है उसमें आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद है और आज्ञा उल्लंघन के लिए शाप भी। दासों की मुक्ति और भूमि की पुनर्स्थापना के आशीर्वाद की तुलना 7 गुना के शाप से की गई है, जिसका उल्लेख लैव्य व्यवस्था के 26वें अध्याय में 4 बार हुआ है। इस आशीर्वाद में उन वर्षों के दौरान जब भूमि विश्राम करती थी प्रभु की ओर से पालन पोषण सम्मिलित था, और जुबिली के वर्ष में 2 गुना आशीर्वाद भी, और 26वें अध्याय का शाप इन दोनों अध्यायों की वाचा संबंधी चेतावनी में उसका समकक्ष है। मध्यस्थ संख्यात्मक रचना लैव्य व्यवस्था 25:8 में प्रकट होती है 7 बार 7 वर्ष। ये तत्क्षण लैव्य व्यवस्था 26 के चतुर्गुणित 7 बार के न्याय के साथ संयुक्त की गई है। इस प्रकार ये मध्यस्थ संख्यात्मक रचना आशीष और शाप दोनों का प्रतिनिधित्व करती है और लैव्य व्यवस्था की पुस्तक में एक दुगुनी साक्षी निर्मित करती है। जुबली की आशीष अथवा शाप की ये संख्यात्मक रचना लामेक के न्याय तथा यीशु द्वारा परीक्षा काल की सीमा की पहचान के बीच रखी गई है। ये तीनों मिलकर एक परीक्षाकालिक सीमा की पहचान करते हैं जो पूर्ण होने पर एक वर्ग को प्रकट करेगी जो धन्य है और एक वर्ग को जो शापित है। अल्फा और ओमेगा जो प्रथम और तृतीय स्वर्ग दूतों के संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं 490 को परीक्षा काल के प्रतीक के रूप में चिन्हित करते हैं। जब इसे जुबली के शाप या आशीष के साथ जोड़ा जाता है तब ये तथ्य महत्वपूर्ण हो उठते हैं जब हम यहेज़केल अध्याय 1:1 के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं, जो यहेज़केल को 17वें जुबली चक्र के 30वें वर्ष में स्थापित करता है। वह जुबली चक्र 22 अक्टूबर 573 ईसा पूर्व को समाप्त हुआ और उसने केवल 22 अक्टूबर 1844 का ही नहीं बल्कि शीघ्र आने वाले संडे लॉ का भी पूर्वरूप प्रस्तुत किया। हम अब 2026 में हैं जो 70वें जुबली चक्र का 47वां वर्ष है। इस जुबली चक्र का पूर्वरूप 17वें जुबली चक्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जहां यहेज़केल 30वें वर्ष में खड़ा था। वह मंदिर में खड़ा था और उन 144,000 का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिन्होंने विश्वास के द्वारा न्याय के अंत में परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है, जैसा 22 अक्टूबर 1844 के बाद विश्वास योग्यों ने किया था। अध्याय 1:1 में भविष्यवाणी के इतिहास में यहेज़केल कहां स्थित है इस तथ्य को चूक जाना अपने दिशाबोध को खो देना है। केबार नदी के पास प्रभु की दी गई महिमा का दर्शन करने के बाद यहेज़केल धूल में नम्र कर दिया जाता है, जैसा कि दानियल, यशाया और यूहन्ना के साथ हुआ था। तब ये चारों उदाहरण उन लोगों के अभिषेक के तत्व प्रदान करते हैं जिन्हें ऐसी कलीसिया को संदेश देना है जो न देखेगी और न सुनेगी। यहेज़केल की पुस्तक में यरूशलेम से संबंधित 6 तिथियां हैं। हम पहले अध्याय 1:1 और 2 में और फिर अध्याय 40:1 में पाई जाने वाली पहली और अंतिम तिथियों पर पहले ही विचार कर चुके हैं। मैंने अध्याय 8:1 में पाई जाने वाली दूसरी तिथि पर भी विचार किया है, परंतु केवल उसके प्रतीकात्मक निरूपण के रूप में, न कि उसे यरूशलेम की घेराबंदी और विनाश के साथ संबंध में स्थित करते हुए, जबकि समस्त पुस्तक उसी धुरी के चारों ओर घूमती है। यरूशलेम 586-585 ईसा पूर्व के अंत में नष्ट कर दिया गया था और यहेज़केल 33:21 में एक भगोड़ा यरूशलेम के पतन का समाचार लेकर पहुंचता है।
और हमारी बंधुआई के 12वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन ऐसा हुआ कि यरूशलेम से बचकर निकला हुआ एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, नगर नष्ट कर दिया गया है। जो बचकर निकला था उसके आने से पहले संध्या को यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मेरा मुंह खोल दिया था, यहाँ तक कि जब वो प्रातःकाल मेरे पास आया तब मेरा मुंह खुला हुआ था और मैं फिर गूंगा न रहा। यहेज़केल 33:21-22।
12वें वर्ष में नगर पर प्रहार हुआ और तब यहेज़केल अपनी ही इच्छा से बोलने के लिए स्वतंत्र हो रहा। यहेज़केल अध्याय 8 का दर्शन 6 वर्ष में हुआ था, अतः ये लगभग 6 वर्ष पूर्व का था जब नगर पर प्रहार हुआ।
और ऐसा हुआ कि छठे वर्ष में छठे महीने के पांचवें दिन जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के प्राचीन मेरे सामने बैठे थे, तब वहां प्रभु यहोवा का हाथ मुझ पर पड़ा। यहेज़केल 8:1।
अगले वर्ष जो सातवां वर्ष था, प्राचीन यहोवा से पूछने के लिए यहेज़केल के पास आए।
और ऐसा हुआ कि सातवें वर्ष में पांचवें महीने के दसवें दिन इसराइल के पुरनियों में से कितने ही यहोवा से पूछने के लिए आए और मेरे सामने बैठ गए। यहेज़केल 20:1।
तब नौवें वर्ष में डेढ़ वर्ष की घेराबंदी आरंभ हुई।
फिर नौवें वर्ष में दसवें महीने के दसवें दिन को यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा और कहा, हे मनुष्य के संतान, इस दिन का नाम, हाँ, इसी दिन का नाम लिख ले, क्योंकि बाबुल के राजा ने इसी दिन यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधा है। यहेज़केल 24:1-2।
इन तिथियों में से प्रत्येक उत्तरकाल के विशिष्ट मार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि पौलुस कहता है कि प्राचीन इसराइल उनके लिए एक उदाहरण है जो संसार के अंतकाल में जीवित हैं।
अब ये सब बातें उन पर उदाहरण स्वरूप घटी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर युगों का अंत आ पहुंचा है। इसलिए जो समझता है कि वह स्थिर खड़ा है, वह सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। 1 कुरिन्थियों 10:11-12।
यरूशलेम से संबंधित सभी छह तिथियां अध्याय 1:1 की पहली तिथि और अध्याय 40:1 में पाई जाने वाली अंतिम तिथि के बूच आती हैं। ये दोनों तिथियां अध्याय 1 के पांचवें वर्ष को चिन्हित करती हैं, जो 592 बीसी था, और अध्याय 40 के 25वें वर्ष को, जो 573 बीसी था। लाइन अपॉन लाइन के स्तर पर यहेज़केल के पास मिस्र के लिए एक रेखा है जिसमें सूर की संदर्भ रेखा सम्मिलित है और यरूशलेम के लिए एक रेखा है। मिस्र की रेखा में 7 प्रत्यक्ष वे मार्क्स हैं जब सूर को सम्मिलित किया जाता है और यरूशलेम में 6 हैं। इन दो रेखाओं के साथ योशिया की रेखा और 17वां जयंती चक्र भी हैं। तो भी जो रेखा किसी प्रत्यक्ष तिथि के बिना चित्रित की गई है, वो अध्याय 4 में पाई जाती है, और अध्याय 4 की वो रेखा उन कई पहियों में से कई को धारण करती है जिन्हें यहेज़केल ने परम पवित्र स्थान में दृष्टि डालते समय देखा था। वो कई प्रतीकात्मक सत्यों से भी परिपूर्ण है।
430
430 की संख्या अनंत वाचा का प्रतिनिधित्व करती है और यहेज़केल अध्याय 4 में प्रभु द्वारा एक जीवित दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ऐसा दृष्टांत जिसमें 430 की संख्या सम्मिलित है।
हे मनुष्य के संतान, तू भी अपने लिए एक ईंट ले और उसे अपने सामने रख और उस पर उस नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र अंकित कर, फिर उसके विरुद्ध घेराबंदी कर और उसके विरुद्ध एक गढ़ बना और उसके विरुद्ध चढ़ाई का टीला खड़ा कर, उसके विरुद्ध छावनी भी लगा और चारों ओर उसके विरुद्ध मेढ़े बैठा। फिर तू अपने लिए लोहे की एक तवा ले और उसे अपने और उस नगर के बीच लोहे की दीवार के समान खड़ा कर और अपना मुख उसकी ओर कर, तब वो घिर जाएगा और तू उसके विरुद्ध घेराबंदी करेगा। ये इसराइल के घराने के लिए एक चिन्ह होगा। फिर तू अपनी बाईं करवट लेट और इसराइल के घराने के अधर्म को उस पर धर। जितने दिन तू उस पर लेटा रहेगा, उतने ही दिन तू उनके अधर्म को उठाए रहेगा, क्योंकि मैंने उनके अधर्म के वर्षों को दिनों की संख्या के अनुसार तुझ पर रख दिया है, अर्थात 390 दिन। इस प्रकार तू इसराइल के घराने के अधर्म को उठाए रहेगा, और जब तू इन्हें पूरा कर चुके, तब फिर अपनी दाहिनी करवट लेटना और यहूदा को घराने के अधर्म को 40 दिन तक उठाए रहना। मैंने तेरे लिए एक दिन एक वर्ष के लिए ठहराया है, इसलिए तू यरूशलेम की घेराबंदी की ओर अपना मुख कर और तेरा बांह उगड़ा रहे, और तू उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी करना, और देख, मैं तुझ पर बंधन डालूंगा और तू एक करवट से दूसरी करवट न फिर सकेगा जब तक कि तू अपनी घेराबंदी के दिनों को पूरा न कर ले। यहेज़केल 4:1-8।
यहेज़केल द्वारा चित्रित यरूशलेम की घेराबंदी एक चिन्ह है, ठीक वैसे ही जैसे सन 66 में सेस्टियस द्वारा यरूशलेम पर लाई गई घेराबंदी। यरूशलेम के विनाश की पहचान करते हुए यीशु पर टिप्पणी करते समय सिस्टर व्हाइट हमें सूचित करती हैं कि यरूशलेम के विनाश की प्रत्यक्ष पूर्ति अंतिम दिनों में है। नबूकदनेस्सर और सेस्टियस द्वारा निरूपित दो गवाहों पर होने वाले विनाश का चिन्ह यह पहचान कराता है कि घेराबंदी का चिन्ह निकट आती हुई रविवार की व्यवस्था का चिन्ह है।
एक दिन एक वर्ष के लिए
जिस अंश पर हम विचार कर रहे हैं उसके भीतर हम विलियम मिलर की भविष्यवाणी व्याख्या के सर्वोपरि नियम के ओमेगा संबंधी बाइबिलीय संकेत को भी देखते हैं, जो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों की आधारभूत आंदोलन में प्रकट हुआ। दिन के बदले एक वर्ष का सिद्धांत उस समय का अल्फा भी था और वो एक ओमेगा प्रतीक भी था, क्योंकि दिन के बदले एक वर्ष का सिद्धांत गिनती की पुस्तक में 10वीं और अंतिम परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसराइल असफल रहा और इस प्रकार उन्होंने अपने ऊपर जंगल में मृत्यु ले आए उन 40 वर्षों के कारण जो वन भ्रमण में व्यतीत हुए।
और तुम्हारे बच्चे 40 वर्ष तक जंगल में भटकते फिरेंगे और तुम्हारे व्यभिचारों का दंड उठाएंगे जब तक कि तुम्हारी लाशें जंगल में नष्ट न हो जाएं। जिन दिनों तक तुमने उस देश की टोह ली, अर्थात 40 दिन, उन दिनों की संख्या के अनुसार एक एक दिन के लिए एक एक वर्ष मानकर तुम अपने अधर्मों का दंड 40 वर्ष तक उठाओगे और तुम मेरे प्रतिज्ञा भंग को जानोगे। मैं यहोवा ने कहा है, निश्चय मैं इस सारी दुष्ट मंडली के साथ जो मेरे विरुद्ध इकट्ठी हुई है ऐसा ही करूंगा। इसी जंगल में वे नष्ट हो जाएंगे और वहीं मर जाएंगे। गिनती 14:33-35।
ये भविष्यवाणी निहितार्थ की एक दिन एक वर्ष का सिद्धांत लाल समुद्र पार करने से आरंभ होने वाली 10 चरणीय परीक्षा प्रक्रिया के अंतिम विद्रोह में पहचाना जाता है, और वही सिद्धांत फिर से तब घोषित किया जाता है जब यरूशलेम की घेराबंदी और विनाश होने वाला होता है, जिस अंश पर हम विचार कर रहे हैं उसमें समझा और लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार घेराबंदी के चिन्ह होने के महत्व को भी, यरूशलेम की घेराबंदी को चिन्ह के रूप में ग्रहण करते समय जो इतिहास रेखा एकत्र होती है उसे पहचानना आवश्यक है, क्योंकि वो कहने की रीति से एक धुरी बन जाती है और रूपकात्मक अर्थ में घेराबंदी के इस चिन्ह से अनेक तीलियां जुड़ी हुई हैं। घेराबंदी का चिन्ह संभवतः यहेज़केल में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, और ये चिन्ह यहूदा के गोत्र के सिंह को उस बात में से सिद्धता प्रकट करने की अनुमति देता है जो प्रारंभ में यहेज़केल को भ्रम प्रतीत हुई थी। घेराबंदी का चिन्ह, एक वर्ष के बदले एक दिन का सिद्धांत और वे भविष्यवाणीगत रेखाएं जो घेराबंदी द्वारा एकत्र की जाती हैं, इस प्रसंग में विचार की जानी चाहिए कि 430 अनंत वाचा का प्रतिनिधित्व करता है।
वाचा।
और उसने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान ले कि तेरा वंश ऐसी भूमि में परदेसी होगा जो उसकी नहीं है, और वे उनकी दासता करेंगे और वे उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे। उत्पत्ति 15:13।
प्रभु ने अब्राहम के साथ 3 चरणीय प्रक्रिया में वाचा बांधी, और उन 3 चरणों में से पहले में ये भविष्यवाणी सम्मिलित थी कि अब्राहम की संतान 400 वर्षों तक मिस्र में बंदी रहेगी। दूसरे चरण में अब्राहम को खतने की विधि दी गई, और तीसरा चरण मोरियह पर्वत पर इसहाक का बलिदान था। चुनी हुई प्रजा को उत्पन्न करने और उसके साथ वाचा में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने जो 3 चरण उठाए उनमें से प्रथम अर्थात अल्फा में 400 वर्षों की पहचान की गई। वो चुनी हुई वाचा प्रजा सन 34 में स्तिफनुस पर पथराव किए जाने के समय परमेश्वर से परित्यक्त कर दी गई, और उसके पश्चात अन्य जातियों के लिए चुने गए प्रेरित पौलुस ने उन 400 वर्षों की पहचान इस प्रकार की, 430 वर्ष।
और मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले ही मसीह में स्थिर कर दी थी उसे वो व्यवस्था जो 430 वर्ष बाद आई निरस्त नहीं कर सकती, ताकि प्रतिज्ञा निष्फल ठहरे। उत्पत्ति 3:17।
जो संख्या वाचा का प्रतिनिधित्व करती है वो 430 है, परंतु अब्राहम और शाऊल के वे 2 साक्षी जिनके नाम क्रमशः बदलकर अब्राहम और पौलुस कर दिए गए, 2 पृथक अवधियों की पहचान कराते हैं जो मिलकर 430 की पूर्ण संख्या बनाती हैं। जब परमेश्वर किसी आत्मा का नाम बदलता है तो ये उस आत्मा और परमेश्वर के बीच वाचागत संबंध का प्रतीक होता है। इसलिए 430 वर्ष एक ऐसी कुल राशि है जो 2 पृथक संख्याओं के जोड़ से उत्पन्न होती है, जैसा कि अब्राहम के 400 और पौलुस के साथ जुड़ी 30 की वृद्धि में है। यहेज़केल 390 दिन अपनी बाईं करवट पर लेटा रहा और उसके बाद 40 दिन अपनी दाईं करवट पर। इस प्रकार 2 संख्याओं की पहचान होती है जिनका कुल योग 430 है।
उत्पत्ति 11 में जल प्रलय के तुरंत बाद निमरोद के विद्रोह के द्वारा स्थापित मृत्यु की वाचा 2 वाचाओं के बीच के भेद को प्रकट करती है। बाबेल के गुम्मट के तत्व उस शैतानी अपने आप को बचाओ वाचा प्रजा की गवाही देते हैं जिन्हें न्याय के लिए ठहराया जाना था, और तितर-बितर किया जाना था। इसी अध्याय में इब्रियों की वंशावली एबर के जन्म के साथ प्रस्तुत की जाती है, जो जीवन की वाचा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी हुई एक प्रजा के आरंभ को चिन्हित करती है, निम्रोद की मृत्यु की वाचा के विपरीत।
और एबर 34 वर्ष जीवित रहा और उसने पेलेग को उत्पन्न किया, और एबर पेलेग को उत्पन्न करने के बाद 430 वर्ष जीवित रहा और उसके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए, और पेलेग 30 वर्ष जीवित रहा और उसने रेऊ को उत्पन्न किया। उत्पत्ति 11:16-18।
उत्पत्ति के 10वें अध्याय में एबर और पेलेग का प्रथम उल्लेख किया गया है।
और एबर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग था क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी विभाजित की गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। उत्पत्ति 10:25।
पेलेग का अर्थ विभाजन या पृथक्करण है, और पेलेग के दिनों में वाचा प्रजा के दो वर्गों का विभाजन बाबेल के गुम्मट के इतिहास और निम्रोद के विद्रोह द्वारा चिन्हित होता है। एबर 464 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु पेलेग विभाजन के जन्म के बाद वो 430 वर्ष जीवित रहा। प्रत्येक तथ्य का अपना अभिप्राय है, और 430 वो संख्या है जिसे पौलुस अब्राहम की वाचा संबंधी भविष्यवाणी को निर्दिष्ट करता है। यद्यपि 430 की संख्या पेलेग के जन्म के बाद एबर के जीवन से संबद्ध है, तथापि उसके जीवन के पहले 34 वर्ष 4 और 30 वर्ष के रूप में व्यक्त किए गए हैं, जो निस्संदेह 34 वर्ष ही हैं, परंतु उन 34 वर्षों की उस सरल अभिव्यक्ति में वो 4 और 30 430 पढ़ी जाती है। फिर 430 आया और तब पेलेग के जीवन की पहली अभिव्यक्ति 30 है।
एबर हिब्रू नाम का मूल है, और ये हिब्रियों का प्रथम उल्लेख है जो वाचा की चुनी हुई प्रजा होने वाले थे। एबेर का अर्थ है पार जाना, इस प्रकार वो उन वाचा जन का प्रतिरूप है जो पृथ्वी से नई पृथ्वी में पार जाते हैं, जैसे इब्राहिम की संतानें लाल समुद्र को पार करके प्रतिज्ञात देश में गईं। 40 वर्षों का जंगल भ्रमण उस पार गमन में बाधक हुआ, परंतु उन 40 वर्षों के अंत में वे यर्दन को पार करके प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर गए। इस प्रकार वो परमेश्वर की प्रजा के अंतिम पार गमन का प्रतिरूप ठहरता है। पेलेग उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जब मनुष्य जाति का दो वाचा संबंधी जनों में विभाजन पहली बार निम्रोद के गुम्मट पर हुआ। निम्रोद की मृत्यु वाचा का प्रतीक भ्रम है, और जीवन की हिब्रू वाचा का प्रतीक पेलेग द्वारा सूचित विभाजन से पहले एबेर के जीवन के 430 वर्ष हैं। पेलेग नाम एक सांकेतिक संख्यात्मक सत्य को भी चिन्हित करता है, क्योंकि एबेर के 430 वर्ष दो संख्याओं में विभाजित किए जाते हैं, और पेलेग 400 को 30 की संख्या से पृथक करने का द्योतक है।
430 के दो भाग हैं, इब्राहिम की वाचा के 400 वर्ष और साथ ही पौलुस द्वारा चिन्हित अतिरिक्त 30 वर्ष। ज्ञान की वो वृद्धि जो परमेश्वर की प्रजा के अंतिम पुनरुत्थान को उत्पन्न करती है, दानियेल अध्याय 12 में निरूपित है, जहां अनंत वाचा के इस द्विभागीय प्रतीक की विशेष रूप से पहचान की गई है और इसे पद 9:11 में प्रस्तुत किया गया है।
और उसने कहा, हे दानियेल, तू चला जा, क्योंकि ये वचन अंत के समय तक बंद और मुहर बंद रखे गए हैं। बहुत से लोग शुद्ध किए जाएंगे, उजले बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई न समझेगा परंतु बुद्धिमान समझेंगे। और जिस समय से नित्य बलिदान बंद किया जाएगा और उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, उस समय से 1290 दिन होंगे। दानियेल 12:9-11।
अंतिम मुहर खुलना, जो पद 10 में शुद्ध किए जाएंगे और उजले किए जाएंगे और परखे जाएंगे के रूप में निरूपित तीन चरणीय परीक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करता है, 1290 वर्षों के साथ संबद्ध है। इस पद के विषय में अग्रदूतों की समझ ये है कि 508 में मूर्ति पूजकता के प्रतिरोध के हटाए जाने से एक 30 वर्षीय प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसने 538 में पोप तंत्र को बाइबल की भविष्यवाणी के 5वें राज्य के रूप में स्थापित किए जाने तक पहुंचाया, और तब वो बाइबल की भविष्यवाणी के 5वें राज्य के रूप में तब तक राज्य करता रहा जब तक कि 1260 वर्ष 1798 में समाप्त नहीं हो गए। 508 से 538 तक के ये 30 वर्ष 2 थिस्सलुनीकियों में पौलुस द्वारा पहले अधर्म में पढ़ना के रूप में भी निरूपित किए गए हैं।
2 थिस्सलुनीकियों में विषय क्रमशः भविष्यवाणी के 4थे और 5वें राज्यों अर्थात मूर्ति पूजक रोम और पोपीय रोम के पारस्परिक संबंध का है।
थिसलुनीकियों के इसी अध्याय में विलियम मिलर ने खोज निकाला कि दानियेल की पुस्तक में डेली मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करता है, और मिलर ने आगे ये भी जाना कि दानियेल में डेली सदा उजाड़ने वाली घृणित वस्तु अथवा उजाड़ने वाले अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। दानियेल की पुस्तक में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु और उजाड़ने वाला अपराध क्रमशः उस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पशु की मूरत और पशु की छाप के रूप में पहचानता है।
विलियम मिलर ने अपनी अधिकांश, यदि सभी नहीं, भविष्यद्वाणी संबंधी अनुप्रयोगों को दो उजाड़ने वाली शक्तियों की अपनी पहचान पर आधारित किया, जिन्हें दैनिक मूर्ति पूजक रोम के रूप में और दूसरी उजाड़ने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दो प्रकार से व्यक्त की गई है। उजाड़ने वाले अपराध के रूप में कलीसिया और राज्य का संयोग, प्रकाशित वाक्य में पशु की मूर्ति के रूप में पापसीय भविष्यद्वाणी संरचना, और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के रूप में सूर्य की उपासना तथा प्रकाशित वाक्य में पशु की छाप के रूप में। दो थिसलुनीकियों में पौलुस की प्रस्तुति से मिलर ने जो समझ प्राप्त की वो मिलर की एक प्रमुख आधारभूत समझ थी, और मिलर एडवेंटवाद की नींवों के प्रतीक हैं। पौलुस ये दावा करता है कि जो लोग दो थिसलुनीकियों के दूसरे अध्याय में प्रतिपादित सत्य से प्रेम नहीं रखते वे ही वे लोग हैं जो प्रबल भांति को ग्रहण करते हैं।
दानियेल के तीन पदों दानियेल 12:9-11 में अंतिम दिनों की प्रतीकात्मक समझ में समय का अनुप्रयोग सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि 22 अक्टूबर 1844 के बाद भविष्यवाणीगत समय का अनुप्रयोग अब मान्य नहीं रहा। 9:11 के पद 30 वर्ष और 1260 वर्ष की दो भिन्न अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 40 की संख्या और 1260 की संख्या दोनों ही भविष्यवाणीगत जंगल के प्रतीक हैं और भविष्यवाणीगत अर्थ में परस्पर विनिमेय हैं। इसलिए 1260 को 40 के रूप में समझा जा सकता है, और 40 400 का दशमांश है। 9:11 के पद सनातन वाचा की संख्या का प्रतीक हैं, जैसा कि 30 पौलुस के संबंध में 400 अब्राहम द्वारा निरूपित किया गया है। जंगल, जिसका प्रतिनिधित्व 1260 द्वारा किया गया है, 40 के जंगल के साथ संगत है, और 4 400 का दशमांश है। 30 30 ही है। 430 की संख्या 400 में 30 जोड़ने से बनती है, जिसे यहेजकेल अध्याय 4 में 390 में 40 जोड़ने के रूप में निरूपित किया गया है।
12वें अध्याय में 9:11 की पद्य पंक्तियां उस अध्याय में वर्णित तीन भविष्य सूचक अवधियों के मध्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वे उस अनंत वाचा का प्रतीक हैं जो अंतिम दिनों में अनमुहर की जाती है। अंतिम दिनों में 430 के अर्थ का अनमुहर किया जाना यहेजकेल के 4 अध्याय में संपन्न होता है।
यहूदा के गोत्र का सिंह अब उन लोगों के लिए अंतिम चेतावनी संदेश की मुहरें खोल रहा है जिन्होंने विश्वास के द्वारा यहेजकेल, यूहन्ना, दानियेल और यशायाह के साथ परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। वो सत्य उन लोगों के ऊंचा उठाए जाने के संबंध में उद्घाटित किया जा रहा है जो केवल इसराइल के निष्कासितों के रूप में ही नहीं, वरन 1,44,000 की पताका के रूप में भी निरूपित हैं। वो सत्य उस वाचा के संदर्भ में स्थापित है जिसका निरूपण अब्राहम के 400 वर्षों द्वारा होता है, और साथ ही उस वाचा के भी जिसका निरूपण पौलुस के 30 वर्षों द्वारा होता है। वो सत्य दानियेल 12:9-11 पदों में प्रस्तुत किया गया है जो तीन प्रतीकात्मक अवधियों के मध्य को निरूपित करते हैं, जिन्हें मिलेरियो ने ठीक प्रकार समझा था। वो मध्य 9:11 सत्य, जिसकी मुहरें दानियेल 12 में खोली जा रही हैं, यहेजकेल के 390 दिनों और 40 दिनों द्वारा निरूपित है। वे दिन यहेजकेल पर 17वें जुबली चक्र के 30वें वर्ष में प्रकट किए जाते हैं, और यहेजकेल एक याजक के रूप में 1,44,000 के याजकत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो तीन परीक्षाओं में से मध्य परीक्षा में है।
5वें दिन और 4 महीने पर मंदिर की परीक्षा के भीतर यहेजकेल को चिह्नित किया गया है। मिलरवादी इतिहास में ये उस 7वें महीने की अवधि के ठीक मध्य बीच को सूचित करता था जो 19 अप्रैल 1844 की प्रथम निराशा से आरंभ हुई और उसी वर्ष 22 अक्टूबर को समाप्त हुई।
सन 1844 की गर्मियों में उस समय के बीच में जब पहले ये समझा गया था कि 2300 दिन समाप्त होंगे और उसी वर्ष की उस शरद ऋतु के बीच, जिसके विषय में बाद में पाया गया कि वे वहीं तक विस्तृत होते हैं, ये संदेश पवित्र शास्त्र के ठीक उन्हीं शब्दों में घोषित किया गया। देखो दूल्हा आता है, द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 398।
21 जुलाई 1844 सात पवित्र महीनों के मध्य में था और उस तिथि को सैमुअल स्नो बॉस्टन टैबरनेकल में उपस्थित होकर अपनी मिडनाइट क्राई की संदेशावली प्रस्तुत कर रहा था। वहीं सार्वजनिक प्रस्तुति में पहली बार उसने पवित्र शास्त्र के ठीक शब्दों में ये उद्घोष किया, देखो दूल्हा आता है। अब हम प्रतीकात्मक रूप से बॉस्टन टैबरनेकल में यहेज़केल के साथ खड़े हैं, ठीक उस समय से कुछ पहले जब मिडनाइट क्राई के संदेशवाहकों का ऊंचा किया जाना ज्वार भाटे की लहर के समान आगे बढ़ता है। पताका को ऊंचा उठाने की भविष्यवाणीगत प्रक्रिया का निरूपण प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में इस्लाम की भविष्यवाणीगत रेखा में किया गया है। यहेज़केल अध्याय 4 दूसरा साक्षी प्रदान करता है और 391 वर्ष और 15 दिनों की उस भविष्यवाणी का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और वो ऐसा अध्याय 4 में करता है।
हम अगले लेख में इन बातों को आगे जारी रखेंगे।